كتاب الكراهية ما كره حرام عند محمد رحمه الله تعالى ولم يتلفظ به لعدم القاطع فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض وعندهما إلى الحرام أقرب المكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى ليس بحرام لكنه إلى الحرام أقرب هذا هو المكروه كراهة تحريم وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب كتاب الكراهية آج هم شروع کریں گے بھئی اور اس میں صاحب کتاب کچھ وہ چیزیں آپ کو بتلائیں گے جن کا کرنا ممنوع ہے کچھ وہ چیزیں جن کا کرنا جائز ہے تو وہ کسی ایک باب میں کسی باب کے تحت داخل نہیں تھی کچھ الگ چھوٹے چھوٹے متفرق قسم کے مسائل ہیں تو ان کو یہاں پر وہ کتاب الکراہیہ میں ذکر کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ چیز مکروہ ہے یا حرام ہے اور یہ چیز جائز ہے وغیرہ بھائی تو سب سے پہلے مکروہ تحریمی اس کا فرق بیان کر رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں ما کرہ حرام عند محمد رحمہ اللہ تعالی ما کرہ وہ جو مکروہ ہے حرام وہ حرام ہے عند محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ولم يتلفظ به اور انہوں نے اس حرام پر تلفظ نہیں کیا یعنی حرام نہیں کہا اسے لعدم القاطع بوجہ قطعی دلیل کے نہ ہونے کے یاد رکھیے فقہا جو کسی چیز کو سنت مستحب اور مکروہ حرام وغیرہ جو کہتے ہیں یہ سب دلائل کی روشنی میں بھائی اور دلیل جتنی قوی ہوگی قطعی ہوگی تو اس سے فرض اور حرام ثابت ہوگا کوئی کام کرنے والا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ فرض ہے اور کوئی کام نہ کرنے والا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے اسے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو اس کو حرام کہیں گے اور اگر دلیل کچھ کم درجے کی ہے تو پھر اس کو فرض نہیں کہیں گے بلکہ واجب کہیں گے اور دوسری طرف جس سے روکا گیا ہے اگر اس میں دلیل کم درجے کی ہے ذرا تو پھر اس کو حرام نہیں کہیں گے بلکہ مکروہ تحریمی کہیں گے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہے ہر وہ چیز جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام ہے کس کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور وہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مکروہ کی نسبت حرام کی طرف یہ ایسے ہی ہے جیسے واجب کی نسبت ہے فرض کی طرف تو جیسے حرام سے بچنا ضروری اسی طرح مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری ہے یہ بھی اسی کی طرح حرام ہے البتہ امام محمد نے اس کو حرام نہیں کہا اس کو مکروہ تحریمی کہا اس لیے کیونکہ دلیل اس درجے کی نہیں تھی بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو دلیل میں کچھ کمی تھی اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہا لیکن ہے یہ اسی طرح حرام جیسے حرام کے کرنے پر سزا ہے اسی طرح مکروہ تحریمی بھی حرام ہے تو اس کے کرنے پر بھی کیا ہے سزا ہے بھائی سزا ہے جیسے واجب ہے بھائی اور فرض فرض جیسے فرض کے چھوڑنے پر سزا ہے اسی طرح واجب کے چھوڑنے پر بھی سزا ہے بھائی البتہ واجب میں دلیل اس درجے کی نہیں ذرا کم درجے کی ہے یا یوں کہو کہ حرام وہ ہے جس کا اعتقاد بھی ہو جس میں کہ اس کا کرنا کیا ہے جائز نہیں اور عمل بھی اس میں اس کو چھوڑنا ضروری ہے اس سے بچنا ضروری ہے اسی طرح دیکھو فرض اور واجب فرض وہ ہے جس کا کرنا بھی ضروری اور اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری اعتقاد بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے اوپر لازم ہے دیکھو ایک ہے عمل نہ کرنا اور ایک ہے اعتقاد نہ رکھنا دونوں میں بڑا فرق ہے ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہاں البتہ اس کا اعتقاد ہے کہ نماز مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں بھائی تو اب اعتقاد تو ہے اس کا لیکن عمل نہیں کرتا تو بھی وہ مومن ہے، اور البتہ یہ عمل نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے سزا بھگتنا پڑے گی بھائی، اور ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی فرما دیں. البتہ یاد رکھو جو حق العبد ہوتا ہے وہ کبھی اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کر دے. بات میں کر رہا تھا فرض کی، مثلا ایک نماز ہے، نماز کا پڑھنا بھی ضروری اور اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری. کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا، البتہ اس کا اعتقاد ہے کہ یہ نماز کیا ہے، ہم پر فرض ہے، تو یہ گناہگار ہے. لیکن اگر کوئی نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو یاد رکھیے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ واجب جو ہوتا ہے، واجب اس میں عمل ضروری ہوتا ہے، اعتقاد ضروری نہیں ہوتا بھائی، اعتقاد ضروری نہیں ہوتا. اگر اعتقاد بھی ضروری ہوتا پھر تو اس کو فرض کہا جاتا، واجب نہ کہا جاتا. تو دیکھو واجب کے اندر عمل ضروری ہے، اعتقاد ضروری نہیں، کیونکہ دلیل ذرا کم درجے کی ہے، دلیل کم درجے کی ہے. تو یہاں پر بھی جیسے واجب اور فرض میں جو نسبت ہے وہی نسبت ہے حرام اور مکروہ تحریمی میں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک. دیکھیے دوبارہ ترجمہ، ما کوریہ حرام عند محمد رحم اللہ، وہ چیز جو مکروہ ہے حرام ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک. اور یہ بھی یاد رکھنا فقہ کی کتابوں میں مکروہ کا لفظ آ جائے تو عموماً اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے. عموماً کیا مراد ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. ہاں کہیں کہیں مکروہ تنزیہی بھی آئے گا لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ما کوریہ حرام عند محمد رحم اللہ، وہ چیز جو مکروہ ہے وہ حرام ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک. یہ یوں ترجمہ کر لو زیادہ بہتر، ہر مکروہ تحریمی حرام ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک. ولم یتلفظ بھی، اور انہوں نے اس کو حرام نہیں کہا، لعدم القاطع، بوجہ قطعی دلیل کے نہ ہونے کے. فنسبت المکروہ الی الحرام کا نسبت الواجب الی الفرض، تو مکروہ تحریمی کی نسبت حرام کی طرف یہ ایسے ہی ہے جیسے واجب کی نسبت ہو فرض کی طرف. وعندهما الی الحرام اقرب، جبکہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک الی الحرام اقرب، مکروہ جو ہے وہ مکروہ تحریمی وہ حرام کے قریب ہے. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو حرام ہی ہے لیکن چونکہ دلیل میں کچھ کمی تھی اس لیے حرام نہیں کہا انہوں نے، جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی حرام نہیں ہے، حرام کے قریب ہے، حرام نہیں ہے بھائی. تو یوں کہو آسان لفظوں میں کہ ممانعت دونوں کے نزدیک ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مکروہ تحریمی کا کرنا ممنوع، اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مکروہ تحریمی کا کرنا ممنوع، لیکن ممانعت جو ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ سخت ہے، اور یہ ممانعت جو ہے مکروہ تحریمی کی یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ کم درجے کی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ کم درجے کی ہے. تو کہتے ہیں وعندهما الی الحرام اقرب، اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے زیادہ قریب ہے. المکروہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی لیس بحرام، مکروہ جو ہے یعنی مکروہ تحریمی وہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ حرام نہیں ہے. لیکنہ الی الحرام اقرب، لیکن وہ حرام کے زیادہ قریب ہے. ھذا هو المکروہ کراہت تحریمی، یہ مکروہ ہے مکروہ تحریمی. دیکھو ایک کراہت دو قسم پر ہے، ایک کراہت تحریمی ایک کراہت تنزیہی. کراہت تحریمی جس میں کراہت ویسے ناپسندیدہ ہونا بھائی، برا ہونا، ناپسند ہونا. تو کراہت تحریمی جس کی ناپسندیدگی جس کی بہت زیادہ ہے، یعنی وہ حرام کے قریب ہے، بہت ناپسندیدہ ہے ایک چیز کا کرنا، تو کہیں گے اس میں کیا ہے، کراہت تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور ایک ہے کراہت تنزیہی، اس کا بھی کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو کراہت ہوتی ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے اور وہ حلال کے زیادہ قریب ہے، حلال کے زیادہ قریب ہے. तो कहते हैं हादा हुअल मकरूह कराहत तहरीमिन, ये मकरूह जो है यानी ये है मकरूह तहरीमी, व अम्मल मकरूह कराहत तंजीहिन, और कराहत तंजीह वाला मकरूह जो है फईलल हिल अकरबू, वो हलाल होने के ज्यादा करीब है। तर्जमे पे नजर है हादा हुअल मकरूह, ये मकरूह है कराहत तहरीमिन, कौन सा मकरूह, मकरूह है तहरीमी। याद रखो इसका बामुहावरा तर्जमा यूं करो कि ये मकरूह है तहरीमी है। हादा हुअल मकरूह कराहत तहरीमिन, ये मकरूह है तहरीमी है, ये यूं कहो ये मकरूह है तहरीमी है। कराहत तहरीम का अलग से तर्जमा ना करना, ये मफूल मुतलक है और मफूल मुतलक का अलग से तर्जमा नहीं करते। ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद की पिटाई की, ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन शदीदन, कैसे तर्जमा करेंगे, तुलबा उमूमन यूं तर्जमा करते हैं, ज़रबतु ज़ैदन मैंने जैद की पिटाई की, ज़रबन शदीदन बड़ी सख्त पिटाई करना, भाई इस तरह कोई बोलता है नहीं। ये मफूल मुतलक को जुमले के अंदर ही ले आओ, ज़रबतु के साथ ही इस शदीद को लाकर जोड़ दो, हां मैंने जैद की सख्त पिटाई की, बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी इसी तरह मकरूह ये इसमें मफूल का सीगा है और कराहता तहरीमीन ये मफूल मुतलक है, और इसको फिर इसके अंदर ही ले आओ और यूं कहो हादा हुअल मकरूह कराहता तहरीमीन, ये मकरूह तहरीमी है। तर्जमा समझ में आ गया, तो कहते हैं ये मकरूह तहरीमी है। वह अमल मकरूह कराहत तंजीहीन, और बाकी मकरूह तंजीही जो है फईलल हिल अकरबू, हलाल के ज्यादा करीब है। तर्जमा समझ में आ गया, तो इसको ये मफूल मुतलक है, इसका अलग से तर्जमा नहीं करना, साथ ही मिलाकर करना है। तो कहते हैं हादा हुअल मकरूह कराहत तहरीमीन, ये मकरूह तहरीमी है। व अम्मल मकरूह कराहत तंजीहिन फईलल हिल अकरबू, और जो मकरूह तंजीही है तो वो हलाल के ज्यादा करीब है। तो शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक भी मकरूह तहरीमी जो है ममनू है, सख्त नापसंदीदा है, हराम के करीब है, अलबत्ता हराम नहीं है, उससे कम दर्जे की कम दर्जा है इसका। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मकरूह तहरीमी हराम ही है, और इस पर भी इसी तरह अज़ाबुन नार होगा जिस तरह हराम के करने पर अज़ाबुन नार है। भाई तो कराहत तंजीही हलाल के ज्यादा करीब, नापसंदीदा है लेकिन उसमें मुमानियत इत सख्त दर्जे की नहीं है भाई, तो यह हलाल के ज्यादा करीब है। अलबत्ता नेक आदमी को मकरूह तंजीही से भी बचना चाहिए भाई, ये ना हो वो उसको अपनी आदत बना ले और फिर यह आदत उसको कहीं हराम की तरफ ना ले जाए। तो फुकहा फरमाते हैं कि नेक आदमी को मकरूह तंजीही से भी अपने आप को बचाना चाहिए भाई, और कम से कम उसकी आदत तो कभी भी नहीं डालनी चाहिए, वरना यह इंसान को आहिस्ता आहिस्ता हराम की तरफ ले जाता है। आगे देखिए भाई, फसलुन अल अक्लु फर्जुन इन दफा बिही हलाकहु व मजूरुन अलैहि इन मक्कनहु मिन सलातिहि काइमन व मिन सौमिहि व मुबाहुन इलश्शिबई लियजीद कुव्वतहु وحرام فوقه إلا لقصد قوة صوم الغد أو لئلا يستحيي ضيفه। खाने का बतला रहे हैं भाई कि खाना पीना कितना खाना फर्ज है और उस पर अजर भी मिलता है, और कितना खाना मुबाह है और कितना खाना हराम है। भाई याद रखिए, मुबाह मुबाह जिसकी शरीयत ने इजाजत दी हो, यानी जिसके करने पर सवाब नहीं और छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं, उसको क्या कहते हैं, मुबाह। मुबाह जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं कि जायज है, ये करना मसलन जायज है। अच्छा, तो अल अक्लु फर्जुन, कहते हैं खाना फर्ज है, इन दफा बिही हलाकहु, अगर वो दूर करता है इसके जरिए अपनी हलाकत को। इतना खाना खाना जिसके जरिए इंसान क्या करे, हलाकत से बच जाए, हलाकत को दूर कर दे अपनी, वो खाना उस पर फर्ज है, जान बचाना इंसान पर फर्ज है। वह मजूरुन अलैहि, और तो ये तो फर्ज है भाई, फर्ज है। वह माजूरुन अलैहि इन मक्का नहु मिन सलात ही कायमन व मिन सौमी ही, और इतना खाना कि जो उस इन अगर इन मक्का नहु, अगर वो उसको कुदरत दे दे मिन सलात ही उसकी नमाज पर, कायमन खड़े होकर, व मिन सौमी ही और उसके रोजे की, तो ये माजूरुन अलैहि है, इस पर क्या है, अजर दिया जाएगा, अजर मिलेगा। भाई पहला खाना जिससे जान बच जाए वो तो फर्ज है, वो तो उसमें फर्ज है, फर्ज का दर्जा तो सबसे ज्यादा मालूम हुआ उसमें, अगर वो खाएगा नहीं अपने आप को हलाकत में डालेगा तो वो गुनाहगार होगा और जहन्नुम में दाखिल होगा भाई, क्योंकि जान का बचाना क्या है, फर्ज है। हत्ता के अगर कोई शख्स शदीद भूख की वजह से मजबूर हो जाए, कोई खाने की चीज नहीं, तो याद रखो अब इतना भूखा हो गया कि अब नहीं खाता तो जान ही चली जाएगी, मर ही जाएगा, तो इस सूरत में जो हराम चीज है वो भी हलाल हो गई, हराम चीज भी क्या हो गई, हलाल हो गई। अब वो हराम रही ही नहीं, अब अगर वो हराम चीज को खाकर अपनी जान नहीं बचाता तो गुनाहगार है, मुजरिम है इंद अल्लाह भाई, उसने अपनी जान नहीं बचाई। हालांकि आपको फुकाहा ने मसला बतला दिया कि इतनी मिकदार खाना जिससे इंसान अपने आप को हलाकत से बचा ले वो उस पर फर्ज है, और मैंने ये भी बताया कि शदीद भूख के आलम में जो हराम चीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, हत्ता कि खिंजीर का गोश्त अगर पड़ा हुआ है और कोई शख्स इतना भूख से उसकी बुरी हालत कि उसे यकीन है कि अब मैंने कुछ ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, कई दिन गुजर गए कुछ नहीं खाया, एक आध दिन से नहीं, एक दिन तक तो आप रोजा रखते हैं पता भी नहीं चलता, ये जब कई दिन गुजर जाते हैं फिर इंसान के लिए हिलना दुश्वार हो जाता है भाई, हिलना जुलना दुश्वार, अब उसको पता है मैं मरने लगा हूं अब अगर मैंने कुछ ना खाया, तो उस वक्त इतनी मिकदार खाना जिससे जान बच जाए, बस पेट भर कर खाने की इजाजत नहीं है, हाँ इतनी मिकदार जिससे क्या हो जाए, जान बच जाए, एक दो लुकमे खा लिए जिससे जान बच जाए, ये खाना इसकी गुंजाइश बल्कि गुंजाइश नहीं, ये फर्ज है। इस वक्त वो खिंजीर का गोश्त भी हराम रहा ही नहीं, इसके लिए क्या बन गया है, हलाल बन गया है, तो गोया इसने हलाल को छोड़कर अपने आप को हलाकत में डाला, लिहाजा क्या बन गया, मुजरिम हो गया। खिंजीर के गोश्त को खाने को किसने हराम करार दिया है, अल्लाह ने, और वही शरीयत ही, वही शरीयत अल्लाह ही की शरीयत आपको बतला रही है कि शदीद भूख के आलम में यह अब हराम रहा ही नहीं, ये क्या बन गया, हलाल बन गया है, इसको खाओ और अपनी जान बचा लो, लेकिन इतनी ही मिकदार की गुंजाइश है खाने की जिससे अपनी जान बचा सको, पेट भरकर खाने की गुंजाइश नहीं है। तो कहते हैं अल अकलु फर्जुन इन दफा बिही हलाकहु, खाना फर्ज है अगर दूर करे उसके जरिए अपनी हलाकत को, यानी अपने आप को हलाकत से बचाए, व माजूरुन अलैहि, और खाना जो है उस पर अजर दिया जाएगा, इन मक्कनहु मिन सलातिही काइमन व मिन सौमिही, अगर वो उसको कुदरत दे दे उसकी नमाज के खड़े होकर, व मिन सौमिही और उसके रोजे की, उस शख्स को वो इतना खाने की मिकदार कि जिससे वो खड़े होकर नमाज पढ़ सके भाई और रोजा रख सके, तो इस इतनी मिकदार खाना इस पर उसको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। बात समझ में आ गई भाई। वह मुबाहुन इल शिबई, और ये खाना मुबाह है, खाना जायज है, इल शिबई पेट भरने तक, पेट भरने तक। शबिया यशबा शबान व शिबान का माना है खाने से सेर हो जाना, पेट का भर जाना, शिकम सेर हो जाना, तो मुबाहुन इल शिबई अल अक्लु मुबाहुन इल शिबई, खाना पीना मुबाह है, जायज है, कितनी मिकदार, पेट भरने तक, यानी इस पर कोई सवाब भी नहीं और कोई गुनाह भी नहीं है। वह मुबाहुन इल शिबई, और पेट भरने तक खाना जो है यह मुबाह है, लियजीद कुव्वतुहु, ताकि उसकी कुव्वत बढ़ जाए, उसमें ताकत आ जाए, काम वगैरह कर सके, और वह हराम उन फौकहु, और इससे बढ़कर खाना हराम है, पेट भर गया फिर इससे आदमी मजीद खाता है तो यह खाना क्या है, हराम है, क्योंकि ये तो अपने आप को नुकसान दे रहा है, ज्यादा खाओगे ये तो मेदे को खराब करेगा, जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। हां इल्ला लिकस्द कुव्वति सौमिल गद, अगले दिन के कल के रोजे की कुव्वत के इरादे से अगर कुछ ज्यादा खाता है तो फिर हराम नहीं, फिर जायज है भाई। कल मुसलमान उसका इरादा है रोजा रखूंगा, गर्मियों के दिन है, लंबे दिन और शदीद गर्मी होगी, मेहनत करेगा, काम काज करेगा, और इसको पता है कि ये जो आम मिकदार में खाता हूं ये तो फिर मुझे जल्दी भूख लग जाएगी, मेरे लिए काम मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इस सूरत में कुछ ज्यादा भी खा सकता है, पेट भर कर, पेट भर गया लेकिन मजीद भी कुछ खा सकता है। ये माना है वह हराम उन फौकहू, और इस पेट भरने की मिकदार से ज्यादा हराम है, इल्ला लिकस्द कुव्वत सौमिल गदी, मगर कल के रोजे की कुव्वत के इरादे से। तर्जमा समझ में आ रहा है, लिकस्द कुव्वत सौमिल गद, ये तर्जमा आखिर से होगा, कल के रोजे की कुव्वत के इरादे से, औली अल्लाह यस्तही या ज़ैफ़ुहू, या ताकि कहीं उसका मेहमान, ताकि उसका मेहमान जो है वो शर्म न करे। इस्तहया यस्तही का माना शर्म करना, ज़ैफ मेहमान को कहते हैं। तो मसलन आपका कोई मेहमान आया और आप मेहमान के लिए आपने खाने का इंतजाम किया, अब आप भी उसके साथ बैठकर खा रहे हैं, अब आपका पेट जल्दी भर गया और लेकिन मेहमान अभी खा रहा है, अब आपने सिर्फ इसलिए उसके साथ खाने में शरीक हैं ताकि कहीं मेहमान जब मैं खाना छोड़ूं तो वो भी शर्म की वजह से खाना ना छोड़ दे, उसका तो अभी पेट नहीं भरा, तो इस सूरत में फिर पेट भरने के बावजूद कुछ जायद भी आप खा लेते हैं तो ये आपके लिए जायज है भाई। बात समझ में आ गई? ये माना औली अल्लाह यस्तही या ज़ैफ़ुहू, या ताकि इसलिए कि कहीं उसका मेहमान जो है वो शर्म न करे। वकुरिहा लबनुल अतानी, और मकरूह है लबनुल अतानी, गधी का दूध, गधी का दूध जो है वो मकरूह है भाई, मकरूह है तहरीमी भाई। व बौलुल इबिल, और इसी तरह ऊंट का पेशाब जो है वो भी क्या है, मकरूह है भाई, मकरूह है तहरीमी। तो कहते हैं अम्मा लबनुल अतानी, तो गधी का दूध जो है फहुक्मुहु हुक्मु लहमी ही, याद रखो ये जो दूध है इसका वो ही हुक्म होता है जो गोश्त का होता है। अगर वो हैवान हलाल है तो ये दूध भी कहां से बना, गोश्त से ही, लिहाजा उसका दूध भी क्या होगा, हलाल। और अगर वो हैवान हराम है तो दूध भी किससे बना है, गोश्त से, तो वो भी क्या होगा, हराम। तो कहते हैं फहुक्मुहु हुक्मु लहमी ही, तो दूध जो है उसका हुक्म गोश्त ही का हुक्म है, दूध का जो हुक्म है वो वही हुक्म है जो उसके गोश्त का हुक्म है, और गधे का तो गोश्त खाना हराम, लिहाजा उसका दूध जो है वो भी क्या हुआ, हराम हुआ। वह अम्मा बौलुल इबिली फहराम इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और तो जो ऊंट का पेशाब है फहराम इंद अबी हनीफत, याद रखिए ऊंट के पेशाब के बारे में हमारे अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ऊंट का पेशाब हलाल है, हलाल है, हलाल है, तो लाजमी बात है मालूम वो पाक है, हलाल है। और जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल जायज है, वैसे यह हलाल नहीं। अगर कोई तबीब बतला दे कि किसी शख्स की शिफा किसके अंदर है, ऊंट के पेशाब में है, अगर इसको पिएगा तो इसको शिफा मिल जाएगी, तो फिर इस सूरत में जरूरत पेश आ गई। और आपने फिका का मशहूर जाबता पढ़ा है, अज़रूरत तुबीहुल महजूरात, कि जरूरत जो है तुबीह वो मुबाह कर देती है, अल महजूरात, महजूरात तो ज़ा है दरमियान में, महजूर भाई, महजूर किसे कहते हैं, ममनू को, ममनू को, तो अज़रूरत तुबीहुल महजूरात, जरूरत जो है वो ममनू चीजों को मुबाह कर देती है, जायज कर देती है। तो यहां भी क्या पेश आ गई, एक शख्स बीमार है तो जरूरत पेश आ गई, तो जरूरत की वजह से वो हलाल हो जाएगा, वो मुबाह हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जरूरत कहां है और कहां नहीं, ये फुकाहा ही बतलाएंगे भाई, हर शख्स नहीं। वरना तो हर शख्स अपने लिए रास्ता निकालेगा, जो भी चीज उसको पेश आएगी कहेगा मुझे इसकी जरूरत थी, देखा। लेकिन ये फुकाहा बतलाएंगे कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है भाई। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऊंट का पेशाब हराम है, हराम है। और दरअसल इसमें एक वाकया पेश आया था, आपने पढ़ा भी होगा कि उरैना वाले, हदीस उरैनीयीन जो है कि उरैना वाले कुछ लोग आए थे और आकर मदीने में मुसलमान हुए, यहां रहने लग पड़े, लेकिन उनके रंग जर्द पड़ गए, मदीने की आबो हवा उनको मुआफिक न आई, रंग उनके जर्द पड़ गए, पेट फूल गए, तो उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम तो, हमारी तो यहां बुरी हालत हो गई, सब बीमार हैं। तो हुजूर ने उनको फिर मदीने से बाहर जहां वो सदके वगैरह के ऊंट थे मुसलमानों के, वहां उनको भेज दिया कि वहां जाकर रहो और वो ऊंटों का पेशाब पियो। तो चुनांचे वहां जाकर रहने लग पड़े और वो ऊंटों का पेशाब पीते और फिर इससे उनको शिफा मिल गई, वो ठीक हो गए। तो चुनांचे जब वो ठीक हो गए, लेकिन ऐसे बदबख्त लोग थे कि उन्होंने वो चरवाहों को कत्ल कर दिया और ऊंटों को हांक कर ले गए, भगा कर ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने सहाबा को उनके पीछे दौड़ाया, सहाबा गए और उनको पकड़ कर ले आए भाई। तो चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पांव कटवा दिए और उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेर दी गई, नबी ना कर दिया गया। और फिर उनको इसी तरह बाहर जंगल में, सहरा में, वो धूप में जमीन पर डाल दिया गया और वहीं पर उनको छोड़ दिया गया। और फिर इसी तरह उस गर्मी में वो तड़प तड़प कर मर गए भाई। तो ये जो हदीस उरैनीयीन है, इसमें देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊंटों के पेशाब पीने का हुक्म दिया था शिफा के लिए। तो इस पर एक इश्काल अलबत्ता जहन में आता है कि इतनी सख्त सजा उनको दी गई कि उनके हाथ और पांव काट दिए गए और आंखों में गर्म सलाइयां फेर दी गई और जुबान पर कांटे चुभोए गए, इतनी सख्त सजा। तो फुकहा लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, कहते हैं दरअसल इन्होंने भी चरवाहों को इसी तरह कत्ल किया था, तो इसलिए उनको, एक तो उन्होंने गदर किया वो अलग, बाकी उन्होंने भी चार, देखो कैसे जालिम लोग थे भाई, कि चरवाहों को कितने जुल्म के साथ उन्होंने कत्ल किया था। एक वैसे कत्ल कर दे और एक हाथ पांव काटना, आंखें खत्म करना और जुबान काटना वगैरह, तो इतने जुल्म के साथ उन्होंने चरवाहों को कत्ल किया था, इसलिए हुजूर ने भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए वही सजा तजवीज फरमाई। तो ये हदीस उरैनीयीन कहलाती है, वो उरैना वाले थे, कबीला उरैना। तो ये हदीस क्या कहलाती है जिसमें इस मौके का जिक्र आता है, हदीस उरैनीयीन भाई, उरैनीयीन उरैना वालों की हदीस भाई। तो हदीस उरैनीयीन में देखो ऊंटों के पेशाब के पीने का हुक्म दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते मालूम हुआ ऊंटों का पेशाब पाक है, वरना कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इसके पीने का हुक्म नहीं देते, इसलिए क्योंकि दूसरे हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मा वुज़िअ शिफाउकुम फीमा हुर्रिमा अलैकुम, या आगे मतन में ये किताब में आ रही है एक आध सतर के बाद, मा वुज़िअ शिफाउकुम, नहीं रखी गई तुम्हारी शिफा, फीमा हुर्रिमा अलैकुम, उस चीज में जो तुम पर हराम की गई है। मालूम हुआ हराम के अंदर शिफा नहीं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्या पीने का हुक्म दे रहे हैं, ऊंटों का पेशाब, मालूम हुआ वो हराम नहीं हो सकता क्योंकि हराम में तो शिफा नहीं, मालूम हुआ ये हलाल है। ये किसकी दलील, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब जरूरत पेश आ गई तो अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, जरूरत क्या है, ममनू चीज को भी मुबाह कर दे, तो वह हराम रहा ही नहीं, हराम रहा ही नहीं जरूरत की बिना पर, लिहाजा हुजूर ने उनको पीने का हुक्म दिया। और इससे मालूम हुआ कि जरूरत के वक्त जो है, यानी कि इलाज मुआलजे के तौर पर इसका इस्तेमाल क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा, जबकि कोई तबीब कह दे इसके अलावा और किसी चीज में तुम्हारी शिफा नहीं है। جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حرام ہے، اور وہی دلیل ما وزع شفاؤکم فیما حرم علیکم، تمہاری شفا جو ہے وہ کسی حرام چیز میں نہیں رکھی گئی. اور یہ جو ان کو شفا، ان کو جو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتا چلا، وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ ان کی شفا کس میں ہے، اونٹوں کے پیشاب میں ہے، اونٹوں کے. تو چونکہ یہ بدبخت اور بدباطن لوگ تھے، لہذا ان کی شفا بھی اللہ نے بری چیز ہی کے اندر رکھی بھائی. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مدینے کی مثال بھٹی کی طرح ہے، بھٹی کی طرح، جیسے بھٹی کے اندر لوہا یا کوئی دھات ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کو پگھلا دیتی ہے اور اس میں سے میل کچیل الگ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مدینے کے اندر بھی جب کوئی ایسا باطن شخص جاتا ہے تو مدینہ اس کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتا، اس کو نکال باہر پھینکتا ہے. اسی لیے وہ لوگ بھی بیمار ہو گئے تھے مدینے کے اندر رہ کر، مدینے انہوں نے ان کو اپنے اندر سے نکال پھینکا بھائی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کے اندر شفا نہیں ہو سکتی بھائی، اور یہ حضور کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا. اور باقی کسی اور کے لیے حلال ہو جائے، کہتے ہیں نہیں، باقی کے لیے تو احتمال ہوگا، طبیب کیا کہے گا، اسے شفا ہو سکتی ہے، لیکن کیا اسے شفا ہونا یقینی ہوگا؟ نہیں، وہ تو یقینی نہیں ہے. وہاں تو یقینی بات تھی، وہی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا، اس لیے وہ حلال ہو گیا، لیکن دوسری جگہ تو یقینی نہیں ہے. اور حرام کے اندر شفا اللہ نے نہیں رکھی، لہذا باقی جگہ ضرورت کی بنا پر بھی ہم اس کو حلال قرار نہیں دیں گے بھائی، کیونکہ حرام میں شفا ہے ہی نہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھو، والد صاحب رحم اللہ عجیب بات بیان فرماتے تھے. آپ فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، جگہ جگہ اختلاف آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا. تو والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ اختلاف وہاں آتا ہے، اس مسئلے میں آتا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ صاحبین کے لیے اس گہرائی تک جانا ان کے بس میں ہی نہیں رہا، تو مجبوراً پھر وہ اس تک ان تک پہنچ ہی نہیں سکے، تو اختلاف کر لیا انہوں نے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کو اللہ نے عظیم مقام نصیب فرمایا تھا بھائی، عظیم مقام، اور وہ مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے کہ کسی کے لیے اس تک پہنچنا ان کے بس میں ہی نہ رہتا. جب وہاں تک پہنچتے ہی نہ، تو مجبوراً پھر کیا کرنا پڑتا، جہاں تک خود پہنچتے اسی کے مطابق مسئلہ بیان کرتے، تو پھر اختلاف ظاہر ہوتا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَوْلُ الْإِبِلِ فَحَرَامٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ حرام ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. وعند ابی یوسف یحل به التداوی، امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حلال ہے اس کے ذریعے تداوی، دوا کرنا، علاج معالجہ کرنا، لحدیث العرانیین، حدیث عرانیین کی وجہ سے. وعند محمد رحمه الله تعالى يحل مطلقا، اور امام محمد رحمه الله کے نزدیک حلال ہے مطلقا. مطلقا یعنی کوئی قید نہیں ہے کہ علاج کے لیے ہو یا بغیر علاج کے ہو، کوئی قید نہیں، ہر حال میں کیا ہے، حلال ہے بھائی، حلال ہے. لأنه لو كان حراما لا يحل به التداوي، اس لیے کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا، امام محمد رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے، لأنه لو کان حراما، اس لیے کیونکہ اگر یہ اونٹوں کا پیشاب حرام ہوتا، لا يحل به التداوی، تو اس کے ذریعے علاج معالجہ بھی حلال نہ ہوتا، دوا بھی جائز نہ ہوتی. قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما وزع شفاؤکم، نہیں رکھی گئی تم لوگوں کی شفا، فی ما حرم علیکم، اس چیز میں جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے. وابو یوسف رحمہ اللہ یقول لا يبقى حینئذ حراما للضرورة، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہو کر باقی نہیں رہتی، للضرورة، کس وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، جب علاج معالجے کے لیے ضرورت پیش آ گئی، دوا کے لیے ضرورت پیش آ گئی، تو اب وہ حرام رہا ہی نہیں، جب حرام نہ رہا تو کیا بن گیا، حلال. تو اب شفا حرام میں ہے یا حلال میں آ گئی، حلال میں آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی. وابو حنیفہ رحم اللہ یقول، اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ یقول فرماتے ہیں الاصل فی البول الحرمت، کہ اصل جو ہے پیشاب کے اندر حرمت ہے. ہا हर चीज के पेशाब में असल क्या है कि वो हराम है। वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अलिमा शिफा अलौरानीन वाहियन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक उरैना वालों की शिफा को जान लिया, वाहियन बैतबार वही के वही के एतबार से। वह अम्मा फी गैर हिम फशिफा उफी ही गैर मालूमिन, जबकि उनके अलावा जो है बाकी लोगों के लिए तो शिफा उसके अंदर मालूम नहीं, क्योंकि वही नहीं तो पता भी नहीं चल सकता कि इसे यकीनी शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। फला या हिल्लू, तो यह हलाल नहीं होगा, यानी इलाज के तौर पर भी हलाल नहीं होगा। वलकलू व शुरबू वल इद्दहान व तत्यबू मिन इना इदहबिन व फिज्जतिन, वल अकलू और खाना, क्या माना इसका आतफ किस पर है? इसका आतफ पीछे जो आया था ना, लबनुल अतानी व बउलुल इबिली, ऐ कुरिहा लबनुल अतानी, तो यहां भी है कुरिहल अकलू, बात समझ में आ रही है। और मकरू है खाना, व शुरबू और पीना, वलिद्दहानु और तेल लगाना, दोहन तेल को कहते हैं, और तेल लगाना। व ततय्युबु, ततय्युब का माना खुशबू लगाना, तीब किसको कहते हैं? खुशबू को, और खुशबू लगाना। मिन इना इज़हबिन व फिज़्ज़तिन, सोने और चांदी के बर्तन से, सोने और चांदी के बर्तन से खाना पीना ये भी मकरूह है तहरीमी, तेल लगाना मकरूह है तहरीमी, और इसी तरह खुशबू लगाना भी मकरूह है तहरीमी है। और यह सिर्फ याद रखो, यह सिर्फ मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, औरतों के लिए भी यही हुक्म है। औरतों के लिए सोना चांदी बतौरे जेवर के तो इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन खाने पीने के लिए, खुशबू के लिए या तेल लगाने के लिए सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना ये औरतों के लिए भी जायज नहीं, क्योंकि ये मुश्रिकीन का तरीका था, ये कुफार और मुतकब्बिरीन का तरीका है, तो शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी गई। अइले रिजाल इवन निसा, यानी कि मर्दों और औरतों के लिए, यानी दोनों के लिए ये मकरूह तहरीमी है, जायज नहीं है। قال صلى الله عليه وسلم انما يجرجر في بطنه نار جهنم, कि वो तो जरजरा युजरजीरु, जरजरा युजरजीरु इसका माने ये पानी पीते हुए, कोई शख्स शदीद प्यासा हो और वो पानी पीता है, तेज तेज पानी पीता है, तो उसके गले से एक आवाज ही निकलती है पानी जब उधर से गुजरता है, तो वो जो आवाज है वो है जरजरा, क्या है? जरजरा। तो कहते हैं इन नमा युजर जिरुफी बतनी ही नारा जहन्नम, लेकिन यहां ये वो आवाज के माना में नहीं, यहां ये उंडेलने के माना में है, उतारने के माना में है, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी उंडेल दिया जाए। तो कहते हैं इन नमा युजर जिरुफी बतनी ही नारा जहन्नम, वो उंडेल रहा है फी बतनी ही अपने आ पेट में, नारा जहन्नम, जहन्नम की आग। जो सोने चांदी के बर्तन में खाता पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है, जहन्नम की आग उंडेल रहा है, माना समझ में आ गया? तो कहते हैं वहल्ल मिन इना इरसासिन व जुजाजिन व बिल्लौरिन व अकीकिन व मिन इना इन मुफज्जिन, और हलाल है, हलाल है, हल्ला इसके अंदर हुआ जमीर है, क्या हलाल है? कहते हैं जो पीछे चीजें जिक्र हुई, खाना पीना, तेल लगाना और खुशबू लगाना, तो भाई वो तो चार चीजें हैं, और हल्ला के अंदर तो हुआ मुफरत की जमीर है। तो जवाब कि कुल्लु वाहिदिन की तावील में आई वह हल्ला कुल्लु वाहिदिन, इनमें से हर एक, तो कुल्लु वाहिद तो देखो क्या है, मुफरत है ना, तो इसके लिए मुफरत की जमीर लौटाए, या ये हल्ला की जमीर राजे है इन चारों को, अला सबीलिल बदल, अला सबील, यानी पहले ये जारे हो गए सिर्फ अकल को, फिर दोबारा राजी हुई किसको? शुर्ब को, फिर इद्दहान को, और फिर ततय्युब को, बारी बारी भाई। तो कहते हैं वह हल्ल मिन इना इरसासिन, रसास भाई, रसास ये कोई धात है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, लुगत की किताबों में इसका नाम इन्होंने लिखा है रांग भाई, रा अलिफ नून गाफ, रांग, रांग। कलई भी लिखा है, कली कर, बचपन में मुझे याद है वो बर्तन कली करवाते थे लोग भाई, वो साइकिलों पर घूमते थे लोग और वो बर्तन पुराने बर्तन होते थे उनको चमका देते थे। तो लुगत की किताबों में इसका क्या नाम लिखा, रसास का रंग। और शायद ये जो जिसको हम उर्दू में सिल्वर कहते हैं, सिल्वर के जो बर्तन हैं, धात है ना, चांदी जैसी धात है, चमकदार सफेद और हल्के फुलके बर्तन होते हैं, आम बाजार में अक्सर बर्तन इसी के बिकते हैं, आम लोग जो खरीदते हैं, तो ये शायद ये इसी सिल्वर को रसास कहते हैं। तो कहते हैं वहल्ला मिन इना ई रसास इन, और हलाल है यानी ये चीजें खाना पीना तेल लगाना और खुशबू लगाना, मिन इना ई रसास इन रंग के बर्तन से, ये यूं को सिल्वर के बर्तन से, वजुजाज इन और शीशे, सुजाज कहते हैं शीशे को, और शीशे के बर्तन से भी खाना पीना वगैरह हलाल है, वह बिल्लौर इन, बिल्लौर कहते हैं ये पत्थर है वही कोई पत्थर, तो उस पत्थर के बर्तन से भी खाना पीना तेल लगाना और खुशबू लगाना जायज है, वह आकीक इन और आकीक, आकीक ये कीमती पत्थर है सुर्ख रंग का, ये अंगूठियों में भी लोग लगवाते हैं, तो इसके बर्तन अगर हो कोई बड़ा पत्थर हो उसे बर्तन बना लिया तो उसमें भी ये खाना पीना और खुशबू और तेल वगैरह लगाना हलाल है जायज है। वह मिन इना इन मुफज्जज इन, मुफज्जज जिस पर चांदी चढ़ाई गई हो, इना ए मुफज्जज जिस पर चांदी चढ़ाई गई हो, एक तो बर्तन है ना कि पूरा ही चांदी से बनाया या सोने से बनाया, और एक बर्तन बनाया किसी और चीज का है, किसी और धात का है, ऊपर क्या चढ़ा दी, चांदी चढ़ा दी, चांदी चढ़ा दी। लेकिन इसमें यह भी याद रखना, पूरे बर्तन पे चांदी चढ़ी हो तो इसका तो वही हुक्म हो गया जो चांदी वाले बर्तन का था, तो यह मुराद नहीं है कि पूरे बर्तन के ऊपर चांदी चढ़ा दी, नहीं, माना यह है उस बर्तन पर कुछ नक्शो निगार चांदी के बना दिए, कुछ हिस्से पर कुछ थोड़ी बहुत क्या कर दी, चांदी चढ़ा दी, वो है इना ए मुफज्जस। और अगर पूरे बर्तन पे चांदी चढ़ा दी तो इसका वही हुक्म है जो पहले बयान हो गया कि सोने और चांदी के जो बर्तन, ये भी किसकी तरह हो गया, चांदी का बर्तन हो गया ये, तो इना ए मुफज्जस से क्या मुराद है, जिस पर कुछ हिस्से पर कुछ नक्शो निगार थोड़े बहुत चांदी के बने हुए हों। तो दोबारा तर्जमा देख लें, वहल्ला मिन इना इन रसास इन वजुजाज इन व बिल्लौर इन व आकीक इन, और हलाल है खाना पीना तेल लगाना और खुशबू लगाना, मिन इना इ रसास इन रंग के बर्तन से और शीशे के बर्तन से, व बिल्लौर इन और बिल्लौर पत्थर के बर्तन से, व आकीक इन और आकीक ये सुर्ख रंग की कीमती पत्थर के बर्तन से भी, ये सब काम जायज हैं, व मिन इना इन मुफज्जज इन और चांदी चढ़ाए हुए बर्तन में से भी ये जायज है, व इंद शाफिई रहमहुल्लाह ताला युकरहु, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक मकरूह है। वो क्या फरमाते हैं कि चांदी चढ़े हुए बर्तन से ये चीजें, इन कामों के लिए उसको इस्तेमाल करना मकरूह है, चाहे पूरा बर्तन चांदी का हो चाहे उसके कुछ हिस्से पर चांदी हो, दोनों सूरतों में एक ही हुक्म है, वो फरमाते हैं ये मकरूह है, जबकि हमारे नजदीक आपने पढ़ लिया कि यह हलाल है। और इमाम साहब से इसकी दलील, फुकहा बैठे थे भाई फुकहा, तो वो यही बात जिक्र कर रहे थे कि जिस बर्तन पर अगर चांदी वगैरह चढ़ाई गई हो तो क्या क्या उससे खाने पीने के लिए इस्तेमाल करना जायज है या जायज नहीं, तो तमाम फुकहा की राय थी कि जायज नहीं है। इमाम साहब खामोश बैठे थे, आखिर में इमाम साहब से पूछा गया तो इमाम साहब फरमाने लगे कि जायज है, तो वो हैरान हुए कि वो कैसे जायज है, कैसे जायज है, तो इमाम साहब का जरा कयास देखो भाई, कयास देखो, इंसान हैरान रह जाता है कहां कहां से जुजिया सूरत निकाल कर ले आते हैं। फरमाया ये बताओ, चांदी की अंगूठी मर्द के लिए मामूली मकदार जायज है या जायज नहीं, सबने कहा कि वो मामूली मकदार की चांदी की अंगूठी मर्द के लिए जायज है भाई, जायज है। तो फरमाया अगर एक शख्स ने चांदी की अंगूठी पहनी हुई हो और वो अपने हाथ से चुल्लू भरकर पानी पिए, क्या करे, चुल्लू से भर कर पानी पिए, ये तो पानी का पीना जायज है या नहीं? कहने लगे जायज है। तो कहते हैं ये भी उसी बर्तन की मिसाल है, जैसे उस बर्तन के एक हिस्से पर क्या लगी हो, चांदी, यहां भी उसके जो हाथों का उसने बर्तन बना लिया उसके एक हिस्से पर क्या लगी हुई है, चांदी, और कोई भी इसको नाजायज नहीं कह सकता। तो फुकहा हैरान रह गए इमाम साहिब की जहानत पर। भाई वजुलूसुहु अला मुफज्जिन, और हलाल है जुलूसुहु उस शख्स का बैठना, अला मुफज्जिन किसी चांदी चढ़ी हुई कुर्सी वगैरह पर, मुत्तकियन मौज़े अल फिज्जती, इस हाल में कि वो बचने वाला हो चांदी के मकाम से। चांदी के, भाई चांदी किसी चीज पर चढ़ाई गई है और उस पर वो बैठता है तो कहते हैं बैठना जायज है, बशर्ते कि चांदी उस हिस्से पर ना हो जहां वो बैठता हो। ये इसी तरह कुर्सी वगैरह है, अगर उस अगर और जगह चांदी लगी है तो एक तो बैठने की जगह चांदी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जहां हाथ रखता है या हाथ से पकड़ता है बैठते हुए वहां पर भी चांदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह घोड़े की अगर जीन है, जीन पर कुछ किसी ने चांदी का नक्शो निगार बनवाए हैं खूबसूरती के लिए, तो कहते हैं ये भी जायज है, लेकिन बशर्ते कि जीन पर जिस जगह बैठता हो वहां चांदी नहीं होनी चाहिए। यानी यूं कहो इस्तेमाल के वक्त वो चांदी उसके जिस्म को मस ना करे, टच ना करे, भाई उसके जिस्म के साथ वो चांदी न लग रही हो। अगर बैठेगा फिर तो लग रही है या नहीं,
जी
या अगर हाथ रखने की जगह है कुर्सी पर वहां चांदी लगी है तो ये तो कुर्सी चांदी हाथ पर लग रही है, या बर्तन पर, बर्तन है चांदी चढ़ा हुआ उस पर नक्शो निगार है चांदी के कुछ, याद रखो इसमें भी जरूरी है कि जहां मुंह लगाकर पीना है या खाना है उससे वहां पर चांदी ना हो। भाई तो इस्तेमाल की जो जगह है, जो जिस्म को लगने वाली है, वहां चांदी नहीं होनी चाहिए, फिर जायज है वरना जायज
जी
नहीं। यह तफसील याद रखना भाई। तो कहते हैं वह जुलूसुहू, जी ये जुलूस का आतफ है याद रखिए, हल्ला पीछे गुजरा था और हल्ला के अंदर हुआ जमीर मुत्तसिल है, फाइल की जमीरे हलाल है वो, क्या वो पीछे मैंने बतलाया था, अल अक्लु व शुर्ब व लिदहानो व ततयुब को हुआ जमीर राजे है, और वो जमीर मुत्तसिल है, और जमीर मुत्तसिल पर व जुलूसुहू का अतफ है, हल्ला हुआ व जुलूसुहू वो भी हलाल, और उस पर बैठना भी, किस पर बैठना, आला मुफज्जिन, वो आगे आ रहा है उस चीज पर बैठना जिस पर चांदी चढ़ी हुई हो। यहां भी इश्काल होता है, इश्काल ये कि जमीर मुत्तसिल पर तो आतफ जायज नहीं, ये मसला पहले भी जिक्र हो चुका है साहेब इसी किताब के अंदर, भाई कुछ सफात कबल जिक्र हुआ था, तो मैंने आपको तफसील बतलाई थी कि जमीर, एक है जमीर मुत्तसिल एक है जमीर मुनफसिल, जमीर मुनफसिल पर तो आतफ जायज है उसमें कोई एतराज नहीं, कोई शक और शुबा नहीं। अंता अंता व जैदुन मुज्तहिदानी, अंता व जैदुन, देखो अब जैदुन का आतफ किस पर है, अंता पर, अंता व जैदुन, देखो अंता है मुबतदा और जैदुन का उसी पर आतफ है, तुम और जैद दोनों क्या हो, मेहनती हो, मेहनती हो, मुज्तहिद का क्या माना, मेहनती है। तो अंता व जैदुन मुज्तहिदानी, तो जैद का आतफ किस पर हो रहा है, अंता पर, और अंता क्या है, जमीर है, लेकिन जमीरे मुनफसिल है, किसी के साथ जुड़ी हुई है या अलैदा है, अलैदा है। बाजों का जमीर किसी लफ्ज के साथ जुड़ी हुई आती है, जैसे जराबतु, ये जराबतु के आखिर में ता जुड़ी हुई है, या जराबतुहू, ये जराबतु के साथ हा जमीर जुड़ी हुई है, तो ये सब क्या है, जमीरे मुत्तसिल जो किसी लफ्ज के साथ जुड़ी हुई हो, और एक है मुनफसिल जो अलैदा हो किसी से जुड़ने की मोहताज ना हो, जैसे हुआ आना अंता नहनु वगैरह, देखो नहनु मुस्लिमून, देखो नहनु, नहनु अलैदा है किसी के लफ्ज से माकबल, कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसके साथ ये जुड़ी हुई हो, तो जमीर एक मुत्तसिल है और एक मुनफसिल, याद रखो जमीर मुनफसिल पर तो आतफ किया जा सकता है, मैंने अभी अंता पर किसका आतफ किया, जैद का, और लेकिन जमीर मुत्तसिल पर आतफ जायज नहीं, आतफ जायज नहीं। मसलन मैं कहना चाहता हूं मैंने भी पिटाई की और जैद ने भी पिटाई की, तो जराबतु वज़ैदुन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ज़रबतु की ताज़मीर क्या है, मुत्तसिल, और इसी पर मैं जैद का आतफ करना चाहता हूं, तो ये तो मैं आतफ कर रहा हूं जमीरे मुत्तसिल पर, और जमीरे मुत्तसिल पर तो आतफ जायज नहीं। हां, दो सूरतों में से एक सूरत आ जाए फिर आतफ जायज होगा। एक सूरत तो ये कि दरमियान में फसल आ जाए, ज़रबतु बकरन व ज़ैदुन, ज़रबतु व ज़ैदुन, देखा मैंने किसकी पिटाई की, बकर की, व ज़ैदुन, और किसने पिटाई की, जैद ने। भाई ज़ैदुन का रफा बतला रहा है कि ये फाइल पर आतफ हो रहा है, मफूल पर आतफ, तो ज़रबतु बकरन, मैंने किसकी पिटाई की, बकर की, और ये यूं कहो, दूसरी मिसाल ले, ज़रबतु अमसी व ज़ैदुन, मैंने गुज़श्ता कल पिटाई की थी, व ज़ैदुन, और किसने की थी। तो देखो अब जैद और का आतफ किस पर है, जमीरे मुत्तसिल पर, लेकिन दरमियान में कुछ फसल आ गया नहीं, कुछ जुदाई आ गई, तो कोई भी लफ्ज दरमियान में आ जाए, थोड़ी सी जुदाई आ जाए, तो फिर इस सूरत में आतफ जायज हो जाता है। या उसी जमीर की ताकीद ले आओ, जमीरे मुत्तसिल की ताकीद ले आओ जमीरे मुनफसिल के साथ, फिर भी आतफ जायज हो जाता है। ज़रबतु व ज़ैदुन, मैं जैद का आतफ किस पर करना चाहता हूं, ज़रबतु की ता जमीर पर, तो इस ता जमीर के लिए जमीर मुनफसिल ले आओ। ज़रबतु से कौन मुराद है, किसकी जमीर है, मुतकल्लिम की, तो मुतकल्लिम और वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, वाहिद, तो वाहिद मुतकल्लिम की मुनफसिल ले आओ, आना आना, तो ज़रबतु आना व ज़ैदुन, ज़रबतु आना व ज़ैदुन। अब देखो ज़रबतु में ता जमीर क्या है, मुअक्कद फाइल है, लेकिन क्या है, मुअक्कद, और आना जमीर क्या है, उसकी ताकीद, और मुअक्कद ताकीद मिलकर ये क्या हुए, मातूफ, और आगे जैद का उस पर क्या हो गया, आतफ हो गया। तो देखो दो सूरतों में आतफ जायज होता है जमीरे मुत्तसिल पर, या तो फसल आ जाए दरमियान में, कोई और लफ्ज आ जाए मातूफ और मातूफ अलह के दरमियान, या जमीर मुत्तसिल की ताकीद ले आओ, किसके साथ, जमीर मुनफसिल के साथ। और यहां पर कहते हैं हल्ला के अंदर जमीर मुत्तसिल है हुआ, और इस पर आतफ है जुलूसुहू का, लेकिन दरमियान में फसल आ गया, कितने ही लफ्ज बीच में आ गए, तो अब ये जायज है। तो कहते हैं वह जुलूसुहू और हलाल है उसका बैठना, उस शख्स का, आलाम मुफज्जज इन चांदी चढ़ी हुई चीज पर, मुत्तकियन मौज़े अल्फिज्जती इस हाल में कि वो बचने वाला हो चांदी की जगह से। फ़क़ौलुहू, कहते हैं मुसन्निफ का कौल जो है, वह जुलूसुहू अत्फुन अला ज़मीरि फी हल्ला, इसका आतफ है उस जमीर पर जो हल्ला के अंदर है, यानी जमीर मुत्तसिल पर। वहादा यजूज़ु, और ये जायज है, ली वजूदिल फसली, किस वजह से, फसल की वजह से। फाइंदा अबी हनीफा रहमल्ला, तो इमाम अबू हनीफा रहमल्ला के नजदीक, अल अक्लु व शुर्ब मिन अल इना अल मुफज्जजी, कि खाना और पीना चांदी के चढ़े हुए बर्तन से, वल जुलूसु अल कुर्सी अविसरीरी अविसरजी औ नहवी ही मुफज्जजान, या बैठना कुर्सी पर, अविसरीरी शरीर कहते हैं चारपाई या तख्त भाई, या बैठना तख्त पर, अविसर्जी, सर्ज कहते हैं जीन भाई, घोड़े पर जो चमड़े की बैठने के लिए जगह बनाई जाती है उसको सर्ज कहते हैं, जीन भाई, या बैठना अविसर्जी किस पर, जीन पर, और नहवी ही या इस जैसी चीजों पर, मुफज्जजन इस हाल में कि ये क्या हो, मुफज्जज हो, इन पर चांदी के नक्शो निगार बने हों, कहते हैं इन नमा यहिल्लु, कि ये हलाल है, इजाकाना मुत्तकियन मौज़े अल्फिज़्ज़ती, जबकि वो बचने वाला हो चांदी की जगह से, चांदी की जगह से बचने, भाई क्या माना बचने वाला हो, कहते हैं अल्ला तकूनुल फिज्जतु फी मौज़े अल फमी, कि वो चांदी जो है मुंह लगाने की जगह में ना हो, मुंह की जगह में ना हो, किसमें, खाने पीने की सूरत में, वफी मौज़िल यदि इंदल अख्जी, और हाथ की जगह पर ना हो, इंदल अख्जी उठाते वक्त पकड़ते वक्त, वो बर्तन पर बाकायदा एक दस्ता बना हुआ है और उस दस्ते पर चांदी चढ़ी है, अब तो आप जब पकड़ेंगे तो चांदी हाथ में आएगी या नहीं आएगी, तो लिहाजा ये सूरत जायज नहीं है। हां अगर हाथ वाली जगह और मुंह वाली जगह पर चांदी नहीं है तो फिर जायज है। یہ مانا ہے کہ الا تکون الفضۃ فی موضع الفم، چاندی جو ہے وہ منہ کے مقام میں نہ ہو، وفی موضع الید عند الاخذ، اور پکڑتے وقت ہاتھ کے مقام میں نہ ہو، وفی موضع الجلوس علی الکرسی، اور بیٹھنے کی جگہ میں نہ ہو کرسی پر، یہ کرسی اور اسی طرح زین بھی بھائی بیٹھنے کی جگہ پر نہ ہو. وعند ابی یوسف رحم اللہ یکرہ مطلقاً، جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ مطلقاً مکروہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ مطلقاً مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہے. یعنی چاندی کے نقش و نگار والے برتن یا کرسی وغیرہ استعمال کرنا مکروہ ہے، لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول پر ہے. اور امام محمد وہ کس کے ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ان کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں امام ابو یوسف، یعنی ان کے بارے میں دونوں طرح کی روایات علماء ذکر کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. تو کہتے ہیں وہ محمد رحم اللہ قد قیلا، اور محمد اور امام محمد رحم اللہ جو ہیں تو قد قیلا، تو کبھی کہا گیا ہے کہ انہ مع ابی حنیفہ رحم اللہ کے، وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں. وقد قیل، اور کبھی کہا گیا ہے کہ انہ مع ابی یوسف رحم اللہ کے، وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں. وقوبل قول کافر قال شریت اللحم من مسلم او کتابی فحل او مجوسی فحرم. بھئی ایک مسئلہ یاد رکھیے، ایک ہیں معاملات اور ایک ہیں دیانات. معاملات وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ آپ کو چیز بیچتا ہے، یا آپ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں، یا اسی طرح آپ کسی کو کوئی ہدیہ دے کر بھیجتے ہیں کہ فلاں کو میری طرف سے یہ ہدیہ پہنچا دو. تو یہ آپس کے معاملات ہیں، جو یعنی معاملات وہ ہیں جن کا آپس میں لوگوں کے درمیان جو مختلف قسم کے امور پیش آتے ہیں وہ ہیں معاملات. وہ کیا ہیں؟ معاملات. اور ایک ہیں دیانات. دیانات یعنی دین سے متعلق جو چیزیں ہیں، دین سے، یعنی کوئی چیز حلال ہے یا حرام. کوئی گوشت پڑا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے، یا پانی ہے، کوئی کہتا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں دیانات، اس کا تعلق دین سے ہے، دین سے ہے بھائی. تو یاد رکھو دینی امور کے اندر، دینی امور کے اندر کسی قابل اعتماد ہونا ضروری، جس اس شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا جو قابل اعتماد ہوگا. اور جبکہ معاملات کے اندر ہر ایک کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، قابل اعتماد ہو یا قابل اعتماد نہ ہو، لیکن دینی امور میں ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص آپ کو کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو وہ اطلاع دینے والا ہو سکتا ہے مسلمان ہو، ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا بچہ ہو، یا نیک ہو یا فاسق اور فاجر ہو، کتنی ہی صورتیں پیش آ گئیں. تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ معاملات کے اندر چاہے کافر ہو، چاہے کافر ہو چاہے فاسق ہو، ہر ایک کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو قبول. لیکن دینی معاملات میں مسلمان ہو، اور مسلمان بھی قابل اعتماد ہو، نیک آدمی ہو، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ وہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے بھائی. فاسق اور فاجر ہو، ایک مسلمان ہے لیکن گناہوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا، تو دینی معاملے میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا بھائی. اس لیے کیونکہ جو شخص خود دین کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اس کی باتوں پر کیا کر لیں، اعتماد کر لیں. تو کہتے ہیں وقوبل قول کافر، اور قبول کیا جائے گا کافر کے قول میں، قال، جس نے یہ کہا، شریت اللحم من مسلم او کتابی، کہ میں نے یہ گوشت خریدا ہے کسی مسلمان سے، او کتابی یا کسی اہل کتاب سے، فحل، تو وہ گوشت کیا ہوگا، حلال. او مجوسیین، یا میں نے گوشت خریدا ہے کسی مجوسی سے آتش پرست بھائی، فحارما تو وہ کیا ہوگا؟ حرام بھائی، معاملات میں کافر کا قول قبول کیا جائے گا، ابھی آپ نے پڑھ لیا. لہذا اب اگر ایک کافر آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ گوشت کس سے خریدا ہے؟ مسلمان سے، تو یہ گوشت حلال ہے، آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں. یا کہتا ہے یہ گوشت میں نے اہل کتاب سے خریدا ہے، وہ کس چیز کی اطلاع دے رہا ہے؟ ہاں، حلال حرام کی اطلاع نہیں دے رہا. اگر وہ حلال حرام کی اطلاع دے گا پھر تو یہ دینی معاملہ بن گیا، وہ معاملے کی خبر دے رہا ہے. میں نے خرید، یہ اپنی خرید کی بات کر رہا ہے، خرید و فروخت. یہ میں نے کس سے خریدا؟ مسلمان سے. تو یہ خریدنا یہ کیا ہے؟ معاملہ ہے یا دینی چیز ہے؟ معاملہ ہے. تو معاملات کے اندر کافر کی بات کو قبول کیا جائے گا. تو اس نے کہا ہے اگر میں نے یہ مسلمان سے خریدا، یا وہ کہتا ہے میں نے اہل کتاب سے خریدا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مثلا وہ جو اہل کتاب ہیں آپ کے علاقے میں، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں حیوان کو ذبح کرتے ہوئے، ورنہ آج کل تو اہل کتاب جو ہیں خصوصاً عیسائی، انہوں نے تو دین کو بالکل چھوڑ دیا ہے. تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ذبیحے پر اللہ کا نام لیتے ہیں، تب تک ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ہاں، یہود جو ہیں وہ خیال رکھتے ہیں ابھی بھی، ہاں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ جو ہے وہ مسلمان استعمال کر سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یورپ وغیرہ اور دیگر ممالک میں وہاں باقاعدہ وہ یہودیوں کے ذبیحے، جیسے مسلمانوں کا ذبیحہ حلال کے نام سے وہاں ملتا ہے، یہودیوں کا ذبیحہ کوشر، کاف واو شین را، کوشر کے نام سے بکتا ہے، تو وہ بھی مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. لیکن عیسائی، انہوں نے تو دین کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، یہ تو بس صرف نام کے عیسائی ہیں، اور ان کو کچھ بھی اپنے مذہب کا بھی نہیں پتا ہوتا. اور تو لہذا ان کے بارے میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ ذبیحے پر اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تب تک ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. تو کافر نے آپ کو کیا اطلاع دی کہ یہ گوشت میں نے کس سے خریدا ہے؟ مسلمان سے، یا کسی اہل کتاب سے. اب وہ گوشت کے حلال حرام ہونے کا نہیں بتا رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام، وہ صرف اپنے ایک معاملے کی خبر دے رہا ہے. یہ جو اس نے بیع و شراء کی ہے وہ اس کی اطلاع دے رہا ہے. اور بیع و شراء معاملات میں سے ہے یا دیانات میں سے؟ معاملات میں سے ہے. لہذا معاملات کے اندر کافر کی بات کو قبول کیا جائے گا. تو اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ مسلمان یا اہل کتاب سے یہ گوشت خریدا، تو وہ گوشت حلال ہوگا. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ مجوسی سے خریدا ہے، آتش پرست سے یہ گوشت خریدا ہے، تو وہ بات کو، یہ وہ اپنے معاملے کی خبر دے رہا ہے، اس کو قبول کیا جائے گا، اور وہ گوشت کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ہاں، اگر وہ آپ کو کافر ایک گوشت آپ کے سامنے لاتا ہے، اور یہ آپ کو دیتا ہے، یا آپ خریدنے گئے، آپ ایک کافر سے گوشت خریدنے لگے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ گوشت، کہ یہ مسلمان نے ذبح کیا ہے، یہ جانور کس نے ذبح کیا تھا؟ مسلمان. اب وہ معاملے کی اطلاع دے رہا ہے یا حلت و حرمت کی اطلاع دے رہا ہے؟ حلت و حرمت کی اطلاع دے رہا ہے. تو یہ دینی معاملہ آ گیا، اور حلت و حرمت وغیرہ دینی معاملات میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ کہ اس کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، لہذا یہ گوشت آپ خرید لیں، یہ حلال ہے، تو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر کافر کہتا ہے میں یہ گوشت کس سے خرید کر لایا؟ مسلمان سے، یا اہل کتاب سے، تو یا مجوسی سے، تو اس کے مطابق اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا کہ حلال ہے. اس پر آپ کہیں گے کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے. وہ اگر کہتا ہے میں نے کس سے خریدا ہے؟ مسلمان سے. تو اگرچہ وہ اپنے معاملے کی اطلاع دے رہا ہے جو خرید و فروخت کے، لیکن حلت بھی آ رہی ہے ساتھ کے نہیں آ رہی. یا وہ کہتا ہے میں نے یہ گوشت مجوسی سے خریدا ہے، تو حرمت بھی ساتھ آ رہی ہے، اگرچہ وہ اپنے معاملے کی اطلاع دے رہا ہے. تو جواب یہ کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں حلت اور حرمت ضمناً معلوم ہو رہی ہے، اس نے تو حلت اور حرمت کی اطلاع نہیں دی. اگر وہ حلت اور حرمت کی اطلاع دے گا پھر ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے. لیکن وہ صرف کیا بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ मुसलमान से खरीदा है या मजूसी से खरीदा है, वो सिर्फ अपने मामले की इत्तला दे रहा है तो मामले के अंदर उसकी बात को कबूल किया जाएगा। अगरचे जिमनन हिल्लत और हुरमत भी मालूम हो रही है लेकिन वो जिमनन हो रही है, सराहतन नहीं। अगर वो सराहतन हिल्लत और हुरमत बयान करेगा फिर हम कबूल नहीं करेंगे। जाब्ता समझ में आ गया? तो कहते हैं वकूबीला कौलू काफिरिन, और कबूल किया जाएगा काफिर के कौल को। काला जिसने कहा शरईतुल्लहमा मिन मुस्लिमिन औ किताबीन, के मैंने गोश्त खरीदा है मुसलमान से या किताबी से, तो उसकी बात को कबूल किया जाएगा। फहल्ला, तो वो गोश्त क्या होगा? हलाल होगा। औ मजूसीन, या उसने कहा यह मैंने गोश्त किससे खरीदा है? मजूसी से, तो उसकी बात को कबूल किया जाएगा। फहारोमा, तो गोश्त क्या होगा? हराम। फइन कौल अल काफिर मकबूल उन फिल मुआमलाती, इस क्योंकि काफिर का कौल जो है वो मकबूल है यानी उसको कबूल किया जाएगा। फिल मुआमलाती मामलात में, लिल हाजति इलैही, क्योंकि इसकी हाजत है जरूरत है। इजिल मामलात कसीरतुल वुकू, क्योंकि मामलात कसीरुल वुकू हैं भाई। अगर हर जगह हम मुसलमान और आदिल होने की शर्त लगा दें तो लोग तकलीफ में पड़ जाएंगे भाई। ठीक है, यहां तो मुसलमान ज्यादा हैं, बाकी जगहों पर तो मुसलमान और काफिर कहीं काफिर ज्यादा होते हैं। अब आप हर मामले में कहें कि एक मुसलमान खबर देने वाला मुसलमान हो, आदिल हो, फिर ही हम बात कबूल करेंगे, तो लोग तकलीफ में पड़ जाएंगे। तो मामला तो दिन रात चलते हैं भाई, दिन रात मामला पेश आ रहे हैं, किसी की तरफ कोई चीज भेज रहे हैं, किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी को वकील बना रहे हैं, किसी के साथ कोई और मामला कर रहे हैं, किसी के साथ तिजारत के लेन देन कर रहे हैं, बीसियों मामला दिन रात आप करते हैं। अब अगर हर एक में ये शर्त लगा दी जाए कि मुसलमान होना चाहिए और कौन होना चाहिए, आदिल काबिल एतमाद होना चाहिए, तो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो चूंकि मामलात में जरूरत थी वो कसीरुल वुकू हैं, तो जरूरत की बिना पर तो लिहाजा तो जरूरत पेश आ गई, हाजत पेश आ गई, और हाजत की वजह से शरीयत ने इजाजत दे दी। बात समझ में आ गई? ये माना इजिल मामलात कसीरतुल वुकू, क्योंकि मामलात कसीरुल वुकू हैं तो हाजत की वजह से जायज होगा इन काफिर के कौल को कबूल करना। व कौलु फर्दिन, और एक फर्द के कौल को भाई, वैसे तो गवाही में कम से कम कितने होने चाहिए? दो मर्द होने चाहिए, एक मर्द और दो, लेकिन यहां हदद की भी नहीं शर्त कि तिला देने वाले दो हों, बल्कि काफिर का भी कौल और एक ही फर्द के कौल को भी क्या कर लिया जाएगा मामलात के अंदर? कबूल कर लिया जाएगा। तो कहते हैं वकौलु फर्दिन, और इसका आता भी उसी पर है कौल काफिर पर, और कबूल कर लिया जाएगा एक ही फर्द के कौल को। काफिरिन औ उनसा, काफिर हो चाहे वो, औ उनसा या मुअन्नस औरत हो, मर्द हो या औरत, औ फासिकिन या क्या हो, फासिक हो, औ आबदिन या आबद गुलाम हो। फिल मामलात मामलात के अंदर, कशीरा इन जुकीरा, जैसे वो खरीद जुकीरा जिसको जिक्र किया गया ऊपर, जैसे काफिर ने भी जिक्र किया था, जैसे उसको कबूल किया गया था, तो चाहे काफिर एक ही मर्द हो या कोई औरत हो, चाहे वो मुसलमान है चाहे काफिरा है, चाहे फासिक है मुसलमान चाहे गुलाम है, जो भी खबर दे, सबके मामलात के अंदर सबकी बात को, एक ही फर्द की बात को कबूल कर लिया जाएगा। का शिरा इन जुकीरा, जैसे कि वो खरीद जिसको ऊपर जिक्र किया गया। व तौकीली, और जैसे तौकील है वकील बनाना। एक शख्स आया, वो आपको आकर जैद की गाड़ी आपके हाथ फरोख्त करता है, आप कहते हैं भाई ये तो जैद की गाड़ी है, तो वो कहता है मुझे जैद ने वकील बनाया है कि मेरी कि उसकी गाड़ी फरोख्त कर दूं, तो अब आपके लिए जायज है कि उसकी बात मानते हुए उससे वो गाड़ी खरीद ले। कमा इजा अखबारा, जैसे किसी ने खबर दी, अन्नी वकील फुलान इन फी बैई हाजा, के मैं फुलां का वकील हूं इस चीज को बेचने में, तो यजूज शिरा उमिन हूं, तो उससे वो चीज खरीदना जायज है। वकौल अब्द व सबी फिल हदीयति वल इज़्नी, और कबूल किया जाएगा गुलाम के कौल को और बच्चे के कौल को। फिल हदीयति, हदिया यानी तोहफे के अंदर, हदिया किसे कहते हैं? तोहफा। वल इज़्नी, और इजाजत में। कोई गुलाम कोई चीज लाया और आपको कहा आपके लिए जैद ने, जैद का गुलाम है, जैद ने ये आपके लिए तोहफा भेजा है, या जैद ने मुझे इजाजत दी है तिजारत की, मेरे साथ तिजारती मामलात करो, तो आप उसके लिए उसकी बात को क्या कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। या बच्चा आता है और कहता है कि जैद ने ये चीज आपके लिए बतौर तोहफे के भेजी है, तो इसमें भी क्या किया जाएगा, बच्चे के कौल को कबूल किया जाएगा। तो कहते हैं कमा इदा जा अभी हदीयतिन, जैसे कि वो जब वो आया हदीये के साथ, वकाला और कहा, चाहे बच्चा हो चाहे गुलाम, और कहा उसने अहदा फुलान उन इलई का हादिहिल हदीयता, के हदिया भेजा है फुलान ने आपकी तरफ ये वाला हदिया, तो यह हिल्लु कबूलुहु मिन्हु, तो हलाल है उसको कबूल करना उससे, ये इजाजत की मिसाल है। औ काला, या उसने कहा अना माजून उन फी तिजारती, के मैं माजून हूं यानी मुझे इजाजत दी गई है तिजारत में, तो युकबलु कौलुहु, तो उसकी बात को कबूल किया जाएगा। वह शुरितल अदलु फी दियानाती, और शर्त लगाई गई है आदिल आदमी की, आदिल होने की, फी दियानाती दीनी मामलात में, और शर्त होगी आदिल होने की दियाना दीनी मामलात में, दीनी मामलात की कोई खबर दे किसी चीज के हलाल होने की या हराम होने की या नजस और पाक होने की या चांद को देखने की वगैरह, ये इस तरह दीनी मामलात से जिनका ताल्लुक हो, तो उसमें मुसलमान भी होना चाहिए और आदिल भी होना चाहिए। आदिल यानी काबिले एतमाद, आदिल काबिले एतमाद यानी वो शख्स, वो मुसलमान जो काबिल एतमाद है, यानी गुनाहों से बचता है, झूठ नहीं बोलता वगैरह वगैरह सिफात, भाई बुरे और घटिया कामों से अपने आप को बचाता है, तो ये क्या है, नेक और मुत्तकी मुसलमान भाई काबिल एतमाद है, तो उसको कहते हैं रजुल आदिल भाई। तो कहते हैं वशूरी तल अदलु फी दियानाती, और शर्त हो गया अदल की दियाना दीनी मामलात में, कल खबर अन नजासतिल माई, जैसे कि खबर देना पानी के नजस होने के बारे में। फतयम्ममा, सूरत ये कि पानी है एक मकाम पर, थोड़ा सा ही पानी है और पानी है ही नहीं आसपास कहीं पर भी, और एक मुसलमान आपको आदिल खबर देता है कि ये पानी क्या है, नजस है, तो फिर आपके लिए इसे वुजू जायज नहीं, क्योंकि आदिल मुसलमान का कौल आ गया, अब उसको कबूल करना पड़ेगा और अब आप तयम्मुम ही करेंगे, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, मुसलमान गुलाम है, काबिल एतमाद है, जब उसने आपको बता दिया ये पानी नजस है, तो इस अब पानी से आपके लिए वुजू करना जायज नहीं, अब आप तयम्मुम करेंगे और फिर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर इत्तला देने वाला कोई फासिक है, फासिक है या काफिर है, काफिर है, काफिर की तो बात कबूल ही नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वो इत्तला देने वाला वो फासिक है, ऐसा मुसलमान है जो गुनाह करता रहता है, और या वो मस्तूरुल हाल है, मस्तूरुल हाल जिसका पता ही नहीं है, मस्तूर है, छुपा हुई पोशीदा हाल, यानी कोई नया आदमी है, आप उसको जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं ये कैसा आदमी है, मुसलमान तो है लेकिन उसके हाल आदिल है या आदिल नहीं ये आपको पता नहीं, तो अगर फासिक या मस्तूरुल हाल मुसलमान आपको खबर देता है उस पानी के बारे में, तो फिर क्या किया जाएगा, कहते हैं इस सूरत में उनके कौल को कबूल करना जरूरी नहीं, ये नहीं कि उनके कौल को रद्द करेंगे, नहीं नहीं ये माना नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, बल्कि आप तहर्री करेंगे, तहर्री कर लेंगे उनके कौल, और अगर आपका गालिब गुमान ये हो कि ये सच बोल रहा है पानी, वाकई ये क्या होगा, नजस होगा, आपका गालिब गुमान बन गया, तो फिर आप तयम्मुम कर लें, आपके लिए तयम्मुम जायज है, तो पानी पड़ा हुआ है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तयम्मुम, क्योंकि आपने तहर्री कर ली, उसने क्या कहा था ये पानी नजस है, और आपका भी गालिब गुमान क्या हुआ कि ये सच बोल रहा है, तो आपने तयम्मुम जायज, अब अगरचे पानी मौजूद है लेकिन आपके लिए तयम्मुम क्या हो गया, जायज हो गया, तयम्मुम कर सकते हैं, या आपने तहर्री की تحری کا معنی غور و فکر کیا اور غالب گمان جو ہے اس پر جو بن جائے اس پر عمل کرے. تو تحری کیا, آپ نے غور و فکر کیا اور آپ کا غالب گمان یہ بنا کہ یہ شخص شاید یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے, اس سے وضو کر لیں. اب آپ کے لیے تیمم جائز نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. جی دیکھیے آگے میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں. کل خبر عن نجاست الماء, جیسے کہ خبر دینا پانی کے نجس ہونے کے بارے میں. فتیمم اذا اخبر بها مسلم عدل ولو عبدا, تو تیمم کرے جب اس کو خبر دے کوئی مسلمان عادل, جب کوئی مسلمان عادل مسلمان اس کو خبر دے. ولو عبدا, اگرچہ غلام ہو. وَيَتَحَرَّى فِي الْفَاسِقِ, اور تحری کرے گا. تحری میں نے بتلایا غور و فکر کر کے رائے قائم کرنا جو غالب رائے بن جائے. وَيَتَحَرَّى فِي الْفَاسِقِ, اور تحری کرے گا فاسق کے بارے میں. وَالْمَسْتُورِ, اور وہ جو مستور الحال ہو. مسلمان کی بات ہو رہی ہے, کافر کی بات نہیں ہو رہی. ثم يعمل بغالب رأيه, پھر وہ عمل کر لے اپنی غالب رائے پر. غالب رائے غالب گمان جو بن جائے اس پر عمل کر لے. ولو اراقا, اچھا بھائی ادھر دیکھیے کیا صورت تھی. پانی پڑا تھا, اس مستور الحال یا فاسق مسلمان نے کیا خبر دی کہ یہ نجس ہے. تو جب نجس ہے اس نے تحری کی اور اس کا گمان کیا بنا, اس کا غالب رائے کیا بنی کہ یہ سچ بول رہا ہے, یہ سچ بول رہا ہے, تو یہ کیا کر سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے. آپ کو فقہا بتلائیں گے کہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ جب آپ کو غالب رائے یہ بن جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے, سچ بول رہا ہے, تو بھی اس پانی کو پہلے انڈیل دو, گرا دو اس کو. اب پانی ہے ہی نہیں, اب آپ کے لیے تیمم کیا ہو گیا, قطعی طور پر جائز ہو گیا, پھر تیمم کر لو. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ پانی کیا ہے, پاک ہے, تو پھر اس پانی سے وضو کریں اور پھر اس کے بعد تیمم بھی کر لیں. اس میں زیادہ احتیاط ہے, کیونکہ اگر ہو سکتا ہے وہ کیا ہو, نجس, تو بعد میں کیا آ گیا, تیمم آ گیا, تو تیمم تو پایا گیا, تو پھر بہرحال آپ کا وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے ولو اراق فتیمم, اور اگر اس نے پانی بہا دیا پھر تیمم کیا, فی غلبتی صدق ہی, اس کے سچا ہونے کے غلبے کی صورت میں, کہ اس کا غالب گمان کیا ہے, وہ سچا ہے, یہ پانی نجس ہے, تو اس صورت میں کیا کرے, اس کو بہا کر پھر کیا کر لے, تیمم کرے. تو اس میں احتیاط زیادہ ہے, یہ آگے چل کر آپ کو کہیں گے. او توزع, یا اس نے او توزع یا وضو کیا, فتیمم, پھر تیمم کیا, فی کذبی ہی, اس کے جھوٹ بولنے کی صورت میں. فاحوتا, تو اس میں احتیاط زیادہ ہے. کیسے, اس نے کیا کہا تھا, یہ پانی
نجس
ہے, اور اس کا کیا خیال ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر کیا کرے, وضو بھی کرے اور تیمم بھی, لیکن وضو پہلے کرے اور تیمم بعد میں کرے, تو اس میں احتیاط زیادہ ہے. تو احوت کا معنی ہے زیادہ احتیاط, بھائی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو فاحوت, تو اس میں احتیاط زیادہ ہے. حاصل کلام یہ ہوا کہ لوگوں کے امور جو لوگوں سے ہی تعلق ہو ان کو کہتے ہیں معاملات, اور جن کا تعلق اللہ سے ہو, دین سے ہو, ان کو کہتے ہیں دیانات. معاملات کے اندر ہر ایک کے قول کو قبول کیا جائے گا, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, چاہے فاسق ہو چاہے غلام ہو چاہے عورت ہو, سب کے قول کو معاملات میں قبول کیا جائے گا. اس لیے کیونکہ معاملات کثیر الوقوع ہیں, تو لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوں, جیسے خرید و فروخت ہے, تجارت ہے, لوگوں کا آپس میں معاملات ہوتے ہیں تجارت میں, خرید و فروخت میں ہوتے ہیں, اسی طرح وکیل بنایا کسی کو, کسی کو وکالت سے ہٹایا, یہ توکیل ہے, تو یہ سب کیا ہیں, معاملات ہیں. اور وہ معاملات جن کا تعلق دین سے اور اللہ سے ہے ان کو دیانات کہتے ہیں, جیسے जैसे किसी चीज की कोई पाकी या नापाकी की खबर दे, तो ये पाकी नापाकी का ताल्लुक किससे है? दीन से है। या किसी चीज के हलाल और हराम होने की कोई खबर दे, तो ये हलाल और हराम किससे है? इसका ताल्लुक दीनी मामले से है। या चांद देखने की खबर दे, तो उसकी वजह से मसा रमजान के रोजे रखने हैं, या उसकी वजह से ईद मनानी है, तो ये किससे मुतालिक है? दीन से मुतालिक चीजें। तो दीन से मुतालिक जो चीजें हैं उनको दियानात कहते हैं, और उनमें आदिल मुसलमान का कौल होना जरूरी है। उसमें काफिर का कौल भी कबूल नहीं किया जाएगा, और उसमें फासिक के कौल को भी कबूल नहीं किया जाएगा। हां, इन्होंने बतलाया, अगर दीनी मामले की खबर कोई फासिक आदमी आपको देता है, या वो मस्तूरुल हाल है, यानी आप उसको जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये आदिल है या आदिल नहीं है, तो इस सूरत में आप फिर आप खुद गौर व फिक्र करें। मसलन आप पानी पड़ा है और कोई पानी वहां पर नहीं, थोड़ा सा पानी एक जगह आपको मिल गया, लेकिन एक शख्स ने आपको बताया, या वो फासिक है या मस्तूरुल हाल, और उसने आपको बताया कि ये पानी नजस है, तो अब आप खुद तहर्री करेंगे, यानी गौर व फिक्र करेंगे, और जो गालिब राय आपकी बन जाए उस पर अमल करेंगे। तो आपने गौर व फिक्र किया, उसने क्या कहा था कि ये पानी नजस है, तो आपने गौर व फिक्र किया आप, और आपको लगा कि ये आदमी सच बोल रहा है, वाकई ये पानी क्या होगा? नजस होगा। तो अब आप तयम्मुम करना चाहते हैं, तो एक सूरत यह है कि वैसे ही तयम्मुम कर लें, पानी भी पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि उसने क्या कहा था, नजस है, आप उससे वुजू नहीं करते, बल्कि क्या कर लेते हैं, तयम्मुम कर लेते हैं। कहते हैं ज्यादा एहतियात यह है, जब आपको उसके सच का गालिब गुमान हो, तो पहले उस पानी को उंडेल दो, गिरा दो। अब पानी रहा ही नहीं, अब तो हर सूरत में तयम्मुम आपके लिए जायज हो गया, तो अब आप तयम्मुम कर लें, तो देखो इसमें एहतियात ज्यादा। और अगर आपका यह ख्याल है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने तो कहा यह पानी नजस है, उस फासिक ने या मस्तूरुल हाल ने, और आपका ख्याल है यह झूठ बोल रहा है, यह पानी तो क्या है, तहर्री की, और ख्याल क्या आया कि यह पानी तो पाक है, तो अब आप क्या करेंगे, वुजू करेंगे, लेकिन एहतमाल तो है कि हो सकता है यह पानी क्या हो, नजस हो, तो लिहाजा एहतियात इसमें यह है कि जब उसके झूठा होने का गालिब गुमान हो, तो कि आप उस पानी से वुजू भी कर लें और फिर उसके बाद तयम्मुम भी कर लें। अब अगर वो पानी नजस भी हुआ, वुजू ना भी हुआ, तयम्मुम तो हो गया ना उसके बाद, तो लिहाजा उस तो एहतियात ज्यादा, कि उसके झूठा होने की सूरत में ज्यादा एहतियात यह है कि वुजू के बाद तयम्मुम भी आप कर लें। बात समझ में आ गई? चलिए बस करें भाई, यहां तक मसाइल समझ में आ गए भाई अच्छी तरह? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।